नमस्कार, द प्रिंट सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज पढ़ रहा हूँ अलमीना खातून की रिपोर्ट, जिसमें वो कोचिंग इंडस्ट्री पर नकेल कसने वाले हरियाणा के कानून के बारे में बता रही हैं। हरियाणा के करनाल के सेक्टर 12 में बाजार की एक व्यस्त सड़क पर अपने नोट्स को हाथों में लिए हुए और मॉक टेस्ट के बारे में चर्चा करते हुए छात्र सफलता की गारंटी देने वाले होर्डिंग वाले कोचिंग क्लासेस करियर काउंसलिंग सेंटर्स के नीचे एकत्र हैं। वहाँ एक बिलबोर्ड पर लिखा है, अपनी मंजिल का दरवाज़ा खोलो। अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में दूसरा बिलबोर्ड उन्हें डॉक्टर बनाने का वादा कर रहा है। उस पर लिखा है, आपकी तैयारी आपका परिणाम निर्धारित करती है, डॉक्टर बनने की दिशा में पहला कदम उठाएं। लेकिन अब हरियाणा सरकार कोचिंग उद्योग क्षेत्र को रेगुलेट करना चाहती है, गलत तौर तरीकों पर रोक लगाना चाहती है, झूठे वादों पर लगाम लगाना चाहती है और उन छात्रों के तनाव को कम करना चाहती है जो काल्पनिक सपनों का पीछा करने में अपनी ज़िंदगी के सालों और लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। 28 फरवरी को राज्य विधानसभा में पारित किया गया नया हरियाणा पंजीकरण और निजी कोचिंग संस्थानों का विनियमन अधिनियम 2024 सरकार को छात्रों और अभिभावकों से अपना वादा पूरा करने का अधिकार देगा। कोचिंग संस्थानों को अब असंभव सपनों को बेचने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालांकि हरियाणा ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर और बिहार में भी निजी कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए अधिनियम है। राजस्थान ने भी राज्य के कोचिंग उद्योग को नियंत्रण में रखने के लिए एक विधेयक पेश किया, लेकिन यह अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। विधेयक के मसौदे में उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसा महसूस किया गया है कि हरियाणा में निजी कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए कानून लाने की ज़रूरत है, ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों के हितों की रक्षा की जा सके। एक बार ये अधिनियम कानून बन जाता है तो निजी कोचिंग संस्थानों को अपनी फीस संरचना और जिन छात्रों का एडमिशन किया गया है उनकी डिटेल्स देनी होंगी। इसके साथ लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम सहित उचित बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी व मानसिक स्वास्थ्य जैसी ज़रूरतों के मद्देनज़र कम से कम एक पूर्णकालिक काउंसलर नियुक्त करना होगा। जो संस्थान इसका पालन करने में विफल रहेंगे उन्हें पहली बार इसका उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये और बाद में 1,00,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह अधिनियम गलत तौर तरीकों का इस्तेमाल करने वाले, रात रात भर चलने वाले कोचिंग सेंटरों और बढ़ती छात्र आत्महत्याओं से ग्रस्त क्षेत्र में एक स्वागत योग्य और बहुत ज़रूरी कदम है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक के लिए अध्ययन कर रहे एक छात्र के पिता आशुतोष गुप्ता ने कहा कि माता पिता इन कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता के बारे में भी नहीं जानते हैं। कोचिंग सेंटर हमारे साथ सब कुछ साझा नहीं करते हैं। अगर सरकार इन पर नज़र रखे तो यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और कोचिंग सेंटरों की मनमानी भी खत्म हो जाएगी। करनाल के सेक्टर 6 में शांत और लगभग सुनसान मुख्य बाजार की सड़क पर जैसे ही छात्र अपने दोपहर के भोजन के अवकाश के लिए कोचिंग संस्थानों से बाहर निकलते हैं, वैसे ही काफ़ी शोरगुल वाला माहौल हो जाता है। उनमें से अधिकांश नए अधिनियम पर चर्चा करने के लिए मॉक टेस्ट की तैयारी में बहुत व्यस्त हैं और इसका उनके लिए क्या अर्थ होगा। 17 साल की खुशी अपने माता पिता की अपेक्षाओं को लेकर अधिक चिंतित हैं। जब वो पिछले साल नीट में सफल नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने माता पिता को काफ़ी निराश कर दिया। अब वो फिर से कोशिश करने में जुटी हुई हैं। सभी छात्रों को इस बात की चिंता रहती है कि अगर वे दोबारा फेल हुए तो उनके माता पिता क्या कहेंगे। 17 वर्षीय पार्थ शर्मा, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका कहना है कि प्रतियोगिता हमें पढ़ाई से ज़्यादा तनाव देती है। हमारे माता पिता हमारी शिक्षा के लिए काफ़ी खर्च करते हैं, इसलिए जब भी मैं अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो यह मेरे लिए तनावपूर्ण हो जाता है। यह करियर उसके लिए उसके माता पिता ने चुना है। वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरे पिता ने मुझे नीट देने के लिए मजबूर किया है। मैं इस परीक्षा में 2 बार असफल हो चुका हूँ। हर साल लाखों छात्र जो निजी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की फ़ीस का भुगतान नहीं कर सकते, वे JEE और नीट जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठते हैं। अन्य लोग भारत के सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए UPSC की तैयारी में वर्षों बिताते हैं। पानीपत में ICS कोचिंग सेंटर से बाहर निकलते हुए 19 वर्षीय पूजा कहती हैं कि मैंने सरकारी नौकरी के लिए 2 परीक्षाएं दीं लेकिन असफल रही। अब मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस संस्थान से जुड़ गई हूँ। मैं इतिहास, अंग्रेज़ी और गणित का अध्ययन करने आई थी। पूजा को उम्मीद है कि जब वो तीसरी बार परीक्षा देंगे तो इससे उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। छात्रों की आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से भारत के कोचिंग केंद्र कोटा में, और आग लगने की घटनाओं व ख़राब बुनियादी ढांचे की शिकायतों के साथ यह क्षेत्र जांच के दायरे में आ गया है। इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। कई उपायों के बीच दिशा निर्देश में कहा गया है कि संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, झूठे वादे नहीं कर सकते या अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। अगर छात्र प्रतिस्पर्धा और माता पिता की अपेक्षाओं से चिंतित हैं तो माता पिता फीस को लेकर चिंतित हैं। राज्य सरकार का कार्यक्रम यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो कि नीट, जेईई और यूपीएससी वगैरह के लिए मुफ्त गाइडेंस देता है, उसके ज़िला समन्वयक दीपांशु सिंह ने कहा कि उच्च फीस हमेशा बच्चों और अभिभावकों के लिए एक बड़ी समस्या रही है। फीस भरना ही उनकी एकमात्र समस्या नहीं है। अधिकांश कोचिंग सेंटर केवल नकद में फीस स्वीकार करते हैं, जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमियों में से एक है। और अगर कोई बाहरी छात्र तैयारी के लिए आता है तो ये पेइंग गेस्ट आवास भी उन्हें लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोचिंग इंडस्ट्री के तीव्र विकास ने कई अनियमितताएं पैदा की हैं। शुरुआत में छात्रों को प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किए गए कोचिंग सेंटरों ने आपस में प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले रंगनाथन SVN कोंडाला के अनुसार इस आंतरिक प्रतिस्पर्धा ने छात्रों को वस्तुओं में बदल दिया है। अंततः उन्हें प्राप्त होने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ा है। उनके अनुसार ये कोचिंग सेंटर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बड़े काल्पनिक वादे करते हैं। वे रिफंड जैसे महत्वपूर्ण डिटेल्स को छुपाते हुए छात्रों और अभिभावकों के अंदर अनावश्यक उम्मीद जताते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं इस इंडस्ट्री से 10 साल से अधिक समय से जुड़ा हूँ और ये कोचिंग संस्थान कभी भी रिफंड के लिए नियम व शर्तें स्पष्ट नहीं करते हैं। वे छात्रों को कभी भी किसी प्रकार का रिफंड नहीं देते हैं, यहाँ तक कि बड़े और प्रसिद्ध संस्थानों में भी नहीं। लेकिन हाई फी स्ट्रक्चर इस क्षेत्र की एकमात्र समस्या नहीं है। पढ़ाने का खराब तरीका और बुनियादी ढांचा भी समान रूप से समस्याग्रस्त है। सिंह ने कहा कि कोचिंग सेंटर सरकार द्वारा ज़मीनी स्तर की जाँच और निगरानी की कमी का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि इनमें से कई केंद्रों में सरकारी नियमों के अनुरूप सलाहकार और काउंसलर हैं, लेकिन उनमें अक्सर उचित योग्यता का अभाव होता है। उन्होंने कहा कि अधिकांश कोचिंग सेंटर्स में बुनियादी स्ट्रक्चर भी नहीं है। पैसे की तंगी के कारण छात्र छोटे कोचिंग संस्थानों का रुख करते हैं, जहां न तो बैठने की उचित जगह होती है न ही वेंटिलेशन की। उन्होंने कहा कि ये संस्थान एक कमरे में 50 से 100 छात्रों को बैठाते हैं, जहां सक्रिय गलियों के अलावा उनके पास कोई आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग कक्षाओं पर भरोसा करते हैं। करनाल में JEE अभ्यर्थी की माँ मीनू व्यास का कहना है कि उनके जैसे माता पिता के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हर क्षेत्र में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। हमारे जैसे कम पढ़े लिखे माता पिता कोचिंग सेंटरों का रुख करते हैं, क्योंकि वे हमारे बच्चों को उनकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे दी प्रिंट सुप्रभात के एक और एपिसोड के साथ। नमस्कार।